अपनी आँखों को हल्के से बंद करते हुए परमात्मा का ध्यान करें, प्रार्थना करें। हे प्रभु, ज्ञान के अनंत सागर में मैं डूब सकूं, ज्ञानमय हो सकूं, प्रकाशमय हो सकूं, ओजमय हो सकूं, आपमय हो सकूं। ओम तत्सत। परमात्मा ने नमः। ओम शांति 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 ही। परमपिता परमात्मा का स्मरण करने के बाद अभी हम कीनोपनिषद को सार रूप में आज फिर से देखते हैं, और उसके बाद हम अगले सत्र में अगर प्रश्न उत्तर होंगे तो ठीक, इस सत्र में भी हम प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। इसके बाद हम अगला उपनिषद प्रश्नोपनिषद शुरू करेंगे। चलिए, तो 10 प्रमुख उपनिषद हैं, शायद पहले भी अपनी बात हुई थी। आदि गुरु शंकराचार्य जी, उन्होंने 10 उपनिषदों पर टीकाएं लिखी, और ऐसा कहा जाता है 108 में से ये 10 बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो अभी तक हमने ईशावश्य उपनिषद किया, कीनोपनिषद किया, कठोपनिषद किया। इन तीनों के बाद अगला हमको प्रश्नोपनिषद करना चाहिए। चलिए, तो आज के इस सत्र में हम थोड़ा सार रूप में जो हमने कीनोपनिषद में पढ़ा उसको सार रूप में समझते हैं। पहली बात, आपने देखा कि भगवान चाहे वो अग्निदेव हैं, चाहे वो वायुदेव हैं, देवता भी एक तिनका तक ना हिला सकते हैं, ना उसे उड़ा सकते हैं, ना उसे जला सकते हैं। तो जो बड़ी से बड़ी शक्तियां हैं ब्रह्मांड की, वो बड़ी से बड़ी शक्तियां भी एक जो परम सोर्स है ऊर्जा का, शक्ति का, उसी से सबको सामर्थ्य, उसी से सबको शक्ति प्राप्त होती है। तो शक्ति, सामर्थ्य, बोध, चेतना उसका एक परम स्रोत है, और उसी परम स्रोत को बार बार कहा वो परब्रह्म है। और इस उपनिषद का जो मुख्य संदेश है, आत्मा सु परमात्मा, एक बूंद और सागर। तो इसमें हमने उस परमात्मा की को इशारे उशारों में जो मेन बात क्या आ रही है कि जब देवता गण, उनकी जो महिमा है, उनकी जो शक्तियां हैं, वो उस परमपिता परमात्मा से प्राप्त होती हैं, तो हमारा तो कहना ही क्या। तो इस बात को हमें समझना चाहिए कि हम जीवन में जो कुछ भी कर पाते हैं, सांस लेना, देखना, सुनना, बोलना, उठना, बैठना, चलना, ये सब उस पर ब्रह्म की शक्ति से ही संभव है। अगर इस बात को हम याद रख सकें और सतत इस पर मनन कर सकें, तो धीरे 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 हमारे को अनुभव में आने लगता है कि मेरे भीतर से वही परम तत्व अपने आप को अभिव्यक्त करता है, मेरे भीतर वही परम तत्व जो है वो जगत को देखता है। ये शरीर जो है वो उठता है परमात्मा के स्थूल शरीर से, तो अस्तित्व का एक अधिभौतिक रूप है, उसका एक अधिदैविक रूप है और उसका एक आध्यात्मिक रूप है। तो जो अधिभौतिक है, द फिजिकल वर्ल्ड, जैसे जो फिर अधिदैविक है, तो वो क्या सूक्ष्म जगत है, सूक्ष्म संसार। और फिर वो जो आध्यात्मिक है, जो मूल परम शक्ति, तो हमारे भी ऐसी तरह की ये शरीर, इस शरीर को चलाने के लिए एक और सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर को चलाने के लिए एक कारण शरीर। तो बार बार जिस साधना की तरफ ये ग्रंथ हमको ले जाता है, वो साधना है इस वर्तमान क्षण में क्या हम याद रख सकते हैं कि जो हम सुन पा रहे हैं, जो हम देख पा रहे हैं, जो हम बोल पा रहे हैं, वो उसी परब्रह्म की शक्ति से है। क्या हमें ये स्मरण रहेगा कि जो मैंने हाथ उठाया, जो मैंने एक कदम उठाया, वो उसी परमात्मा की शक्ति से उठाया। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो हम उसके साथ एकाकार का अनुभव कर सकते हैं। यही इस कीनो उपनिषद की साधना है, सतत रूप से लगातार उस परम का स्मरण करते जाना। तो ये ग्रंथ जो है सेल्फ रियलाइजेशन का ग्रंथ है। अगर सेल्फ रियलाइजेशन मतलब हमको एहसास हो जाए, हमको पता हो जाए कि ना ये शरीर के बस की बात है, क्योंकि केवल शरीर के सहारे से जीवन को चलाया जाना संभव नहीं। आप जरा कल्पना करके देखिए, केवल ये शरीर, तो वो तो मृत शैया पर भी पड़ा है। शरीर के स्तर पर जीवन को चलाना संभव नहीं, और क्या बौद्धिक स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, विचार के स्तर पर जीवन को चलाना संभव है कि नहीं? वो भी बार बार रूपांतरित हो रहे हैं, विचार भी बार बार बदल रहे हैं। पहले जो मैं सोचता था, अब मैं जो सोचता हूँ, उसमें बहुत भेद है, वो शाश्वत नहीं है। जैसे हमारा ग्रॉस बॉडी बदलता रहता है, जैसे कि ये शरीर पुराना हो गया, जर्जर हो गया, तो मिट्टी में मिल जाएगा और फिर दोबारा से एक नए जीवन, इस शरीर का निर्माण होगा। उसी तरह से जो हमारा मन है, जो साइकिक बॉडी है, वो भी लगातार बदल रही है। लेकिन हम इन दोनों के साथ इतना ज़्यादा एकाकार कर लेते हैं कि इसके परे जो तीसरा इन्हें प्रकाशित करता है, जो इन्हें शक्ति प्रदान करता है, जिसके होने से इन दोनों का कोई अर्थ बन पाता है, उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। या तो हम स्थूल शरीर को बहुत जोर से पकड़ लेते हैं, दिस इज इट, या हम सूक्ष्म शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा बहुत जोर से पकड़ लेते हैं और कहते हैं दिस इज इट। इसलिए बार बार उपनिषदों का जो मूल संदेश है वो है उस परब्रह्म को जान लेना, और ये जान लेना कि आप ही उसका, वो आप ही के भीतर है। और धीरे 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 ये हमारे भीतर जो इंडिविजुअलिटी है, हमारे भीतर जो ये टूटा टूटापना है, मैं करता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं, ये अगर घुलता चला जाए और आता चला जाए अंदर, आप ही, तू ही, तो कहते हैं कि जीवन में जो बाधाएं हैं, जो स्ट्रगल हैं, जो दुख है, जो पीड़ा है, वो सब हटती चली जाएगी। जब बच्चों की तरफ देखें और हमको उनमें दिखाई दे कि ये परमात्मा का रूप है, तो उनके साथ हम कैसे डील करेंगे, वो बदल जाएगा। जब हम अगर व्यापार में हैं और अपने कस्टमर्स के साथ उसी तरह से डील करते हैं कि ये परमात्मा का रूप है, एक शिक्षक जो है जब अपने विद्यार्थियों की तरफ देखता है कि ये परमात्मा का ही रूप है, पढ़ाने वाला भी वही है और पढ़ने वाला भी वही है, सीखने वाला भी वही और सिखाने वाला भी वही, और धीरे 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 बात समझ में आती है कि ये जो पूरा संसार है, इस संसार में जो भौतिक वस्तुएँ हैं, जितना भी भौतिक जगत है, चाहे वो पहाड़ है, नदी है, सूर्य है, आकाश है, सौरमंडल है, पूरा ब्रह्मांड, इसमें जो भी पदार्थ है, वो पदार्थ भी और सूक्ष्म, वो पदार्थ कैसे बनाए कि जैसे एक बार के लिए वेपर की कल्पना कीजिए, जल की वाष्प, तो जल वाष्प क्या करती है कि जल वाष्प में बहुत शक्ति है, ट्रेन के इंजन को धक्का दे देती है, बड़ी बड़ी मशीनों को चला देती है, इस वाष्प में तो बहुत शक्ति है। तो वो जो वाष्प की शक्ति है वो क्या होती है कि मान लो वो ठंडा हुई किसी खास प्रक्रिया से, और वो वाष्प ठंडा होकर क्या बन जाती है कि जल बन जाती है। वो जो जल है उसको थोड़ा और ठंडा करें किसी खास प्रक्रिया से, तो वो क्या कन्वर्ट हो जाता है, वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक संकेत रूप में अगर हम इसे समझें कि वो जो जीवन ऊर्जा है, जो पर ब्रह्म है, वही पर ब्रह्म जो है, जो चैतन्य है, परम चेतना है, वही क्या करता है, वो थोड़ा सा परिवर्तित होता है ऊर्जा के रूप में, और ऊर्जा से वो पदार्थ के रूप में, वही जो है हर रूप में ढलता है। तो आज विज्ञान जो है इस बात को तो मान रही है कि एवरी थिंग विच एवर वी एक्सपीरियंस इन दिस कॉस्मोस इज मेड अप ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी एक और छलांग लगाना बाकी है। पहले वैज्ञानिक भी कहते थे पदार्थ की अलग सत्ता है, फिर धीरे धीरे कहा कि पदार्थ और ऊर्जा दो सत्ताएं हैं, फिर कहा कि नहीं 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 पदार्थ और ऊर्जा सच में एक ही है। जब आइंस्टाइन ने इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर कहा कि पदार्थ को ऊर्जा में बदल सकते हैं, ऊर्जा को पदार्थ में बदल सकते हैं, इंटरचेंजेबल। और फिर अब धीरे धीरे कहा कि हाँ ऊर्जा ही है जिससे सारा जगत निर्मित हुआ है। लेकिन अभी ये समझना जरूरी है क्यों ऊर्जा पदार्थ में बदल जाती है और कैसे पूरे ब्रह्मांड में जो एनर्जी और मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इतना सटीक कैसे हो जाता है, कैसे इतना कमाल का संतुलन हर चीज़ में हो जाता है, कैसे ब्रह्मांड की हर ऊर्जा, हर शक्ति, हर पदार्थ एक खास नियम तंत्र से बंधा होता है और उसके अनुरूप वो कार्य करता है, छोटे से अणु और परमाणु से लेकर बड़े से बड़े पिंड तक। तो जब ये सारे रहस्य प्रकट होते हैं तो विज्ञान भी कहता है कोई एक शक्ति है, चलो उसे ढूंढते हैं। वो अपने प्रयोगों के माध्यम से धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहे हैं। और एक बाहर का रास्ता है, तो बाहर का जो रास्ता है उपनिषद भी दो रास्ते सुझाते हैं। एक रास्ता जो साधना का है उस रास्ते को क्या कहते हैं, नेति नेति नेति, और जो इसका दूसरा रास्ता है उसे कहते हैं इति इति इति। तो इति 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 से क्या तात्पर्य है कि जो कुछ है वही परमात्मा, वही परमात्मा है, वही परमात्मा है। जिस टेबल को आपने छुआ, जिस बेड पे को आपने देखा, जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, सब उसी का स्वरूप है। सब पूरा जगत, पूरा ब्रह्मांड उसी का अनंत रूप है। तो ये एक तरीका, उपनिषद का एक सुझाया गया मार्ग है कि हम इस साधना के साथ आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा मार्ग उपनिषद एक और सुझाते हैं, वो कहते हैं नेति नेति नेति। नेति 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 में क्या है, वो कहते हैं कि इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। ये टेबल आज टेबल है, कल ये पेड़ थी, आने वाले भविष्य में ये खाद बन जाएगी। इसमें कहाँ वो परम सत्ता, इसमें कहाँ वो परम शक्ति। तो नेति नेति का रास्ता जो है वो डिनायल का पाथ है, और अंततः दोनों रास्ते एक ही जगह पहुंचते हैं। सब कुछ परमात्मा है, एक ये रास्ता है। और दूसरा जो रास्ता है कि वो परमात्मा जो है वो इस जगत से, इन सब चीज़ों से, हमारी इंद्रियों से, हमारे मन से, हमारे हर तरह के संज्ञान से, हर चीज़ से, सबके उससे परे है। तो नेति 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 आदमी सब छोड़ता जाता है, छोड़ता जाता है, छोड़ता जाता है, और एक ये शरीर भी नहीं, ये मन भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, और अंततः वो कहता है ये इंडिविजुअलिटी भी नहीं, मैं भी नहीं। और जब मैं भी नहीं तो वो उस अनंत को पा लेता है। ये वही क्षण है जब बूंद सागर में मिल जाती है, जब वो कहती है मैं भी नहीं, मेरा भी उसके अतिरिक्त कोई और अस्तित्व नहीं। तो इस साधना को हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हम इसको कैसे देखें, इसके जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस हैं उनको हम कैसे देखें, बच्चों को हम इसे कैसे समझाएं ताकि बच्चे अपने भविष्य को इन उपनिषद के इस ज्ञान पर निर्मित कर सकें। क्योंकि इसका एक आध्यात्मिक पक्ष वो हम समझ रहे हैं, लेकिन बच्चों के साथ बैठ के इसको कैसे समझाएं और जीवन में इसकी उपयोगिता को कैसे समझें। दो तीन बातें हैं। पहली बात तो ये कि जैसे जैसे हम अभ्यास करते हैं कि हमको जो सारा सामर्थ्य शक्ति जो हमको प्राप्त हो रही है किसी भी कर्म के लिए, किसी भी कार्य के लिए, वो शक्ति जो है वो मेरी शक्ति नहीं है, वो उस परमपिता परमात्मा की शक्ति है। तो तुरंत ही हमारे भीतर जो है वो एक विनम्रता प्रकट हो जाती है। जैसे आपने अनुभव किया हो, जब आप अपनी गाड़ी चलाते हैं तो थोड़ा अलग तरह से चलाते हैं, जब आप किसी की दूसरे की गाड़ी चलाते हैं तो थोड़ा अलग तरह की सावधानी होती है, होता है कि नहीं? एक अंदर 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 एक फीलिंग होता है कि नहीं कि अरे यार कहीं दूसरे की गाड़ी है, कहीं इधर उधर टच नहीं हो जाए।
और जब आपको ये पता चले कि ये जीवन रूपी जो गाड़ी है, ये जो शरीर है, ये जो मन है, ये उसी परमात्मा का दिया है, और जैसे जैसे इस बात की अनुभूति गहरी होती जाती है, परमात्मा का शरीर, परमात्मा का मन, परमात्मा का जीवन, और जो मैं कर्म कर रहा हूँ उसी के सामर्थ्य से कर रहा हूँ, उसी की शक्ति से कर रहा हूँ, उसी की प्रेरणा से कर रहा हूँ। बच्चे भी जब इस भाव से, और बच्चों को ये भाव कैसे पकड़ाना है, बच्चों को ये भाव पकड़ाना है कि अस्तित्व के साथ, इस जगत के साथ हमारा एक बड़ा गहरा नाता है। बच्चों को पहले मोटी मोटी बातें समझ में आएंगी, अगर सृष्टि नहीं तो हम भी नहीं, तो सृष्टि के प्रति एक कृतज्ञता, एक आदर का भाव, वो सबसे पहले बच्चों की आवश्यकता है। सबसे पहले वो ग्रैटिट्यूड से शुरू करें, सत्कार से शुरू करें, प्रेम से, श्रद्धा से, वहाँ से वो शुरू करें, प्रकृति के साथ प्रेम से वो शुरू करें। और जब एक किसी बिंदु पर हमारे मन में भाव पैदा होता है कि अरे माता पिता मेरी कितनी सेवा करते हैं, माता पिता ने मेरा कितना ख्याल रखा है, मुझे कितना प्रेम दिया है, ये भाव जो है माता और पिता के साथ बच्चे को जुड़ने में हेल्प करता है। फिर इसी को थोड़ा और आगे लेके जाते हैं कि पर्यावरण को देखो कैसे मेरे को हेल्प करता है, इसके बिना तो मैं एक क्षण जिंदा नहीं रह सकता, तो थोड़ा सा और एक डायमेंशन है, और धीरे 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 वो विराट का रूप ले लेता है, अनंत का रूप ले लेता है। तो बच्चों के साथ जब हम बैठते हैं तो हम ग्रैटिट्यूड से इसका अभ्यास उन्हें कराना शुरू करते हैं, और वो देखते जाएं कि क्या अद्भुत उन्हें मिला है जीवन के रूप में, ये उनके हृदय में स्थापित होना चाहिए। हम जब थोड़ा बरसों से इस साधना में लगे हैं तो हमको तो धीरे 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 ये लगना ही चाहिए कि देखिए वो भी परमपिता परमात्मा कैसे हमारे भीतर से सब कुछ करता है। लेकिन बच्चों को इस अंतिम सीढ़ी के बारे में अभी नहीं बता सकते, उनको थोड़ा थोड़ा करके बताना पड़ेगा, नहीं तो वो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। जब सब कुछ परमात्मा ही करता है तो मेरे जो खराब मार्क्स आते हैं वो भी परमात्मा ही लाता है, चलो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जो मुझे आलस आ रहा है वो भी परमात्मा ही लाता है, प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। जो कार्य मैं करता हूँ उसकी शक्ति से करता हूँ, अब उसकी शक्ति से मैं अच्छे कार्य करता हूँ, बुरे कार्य करता हूँ, उसकी शक्ति को मैं अपनी शक्ति मान के अपने अहंकार को पोषित करता हूँ, या उसकी शक्ति को मैं उसकी शक्ति मान के अपने भीतर विनय, प्रेम, आदर, सत्कार और सद्गुणों का विकास करता हूँ। कर्म तो करता हूँ, इन कर्मों को किस प्रकार से करता हूँ, मेरे भीतर जब मैं कर्म करता हूँ तो भाव उठते हैं, किस प्रकार के भाव उठते हैं, अहंकार का भाव उठता है या विनम्रता का भाव उठता है, और मेरे भीतर विचार उठते हैं तो किस प्रकार के विचार उठते हैं, क्योंकि अगर हमने अहंकार के भाव को पोषित किया है तो आगे जाके यहाँ जाके जो अंततः जो विचार प्रकट होंगे, मैं श्रेष्ठ हूँ, दूसरे श्रेष्ठ नहीं, उनको नीचा दिखाने का प्रयास शुरू हो जाएगा, और देर सवेर ये जो सब है वो दुख का कारण बनेगा, तकलीफ का कारण बनेगा। तो हम अपनी जीवन जीने की जो हमारी कला है, जीवन जीने का जो हमारा ढंग है, उसके द्वारा अपने जीवन को हम स्वर्ग सा निर्मित करते हैं, और उसी के द्वारा कुछ लोग अपने जीवन को नरक सा निर्मित करते हैं। हम सतत निर्माण की प्रक्रिया में हैं, जैसे वो परब्रह्म अनंत ब्रह्मांड की रचना करता है, वैसे ही उसी का अंश हम हैं। हम भी लगातार रचना करते हैं, हम भी लगातार चीज़ों को क्रिएट करते हैं, अपने स्वयं के जीवन को हम क्रिएट कर, हमारे आसपास के परिवेश को हम क्रिएट कर रहे हैं। कैसे हम क्रिएट कर रहे हैं उसे, अच्छा, सुंदर, स्वस्थ, अद्भुत, या दूसरे तरह से। तो इस प्रकार से ये कीनो उपनिषद जीवन जीने का एक मार्ग हमें प्रदान करता है। आज के लिए इतना ही। ओम तत्सत। परमात्मने नमः। ओम शांति 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 ही।